तारीख 1 अक्टूबर दिन गुरुवार, दिन भर के साथ मैं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, स्कूटी, टीवी देने का किया वादा। अरुण जेटली ने कहा ये विकास का चार्जर है।
ये बिहार में एक चार्टर ऑफ डेवलपमेंट है और आर्थिक दृष्टि से बिहार को पिछड़ेपन से निकालने का एक संकल्प है।
नेपाल में जारी हड़ताल और बंद से स्वास्थ्य समेत कई सेवाएं बाधित, लोग परेशान। अफगानिस्तान में अब सरकारी सेनाओं का दावा कुंदूज पर किया कब्जा। श्रोताओं के पत्रों के अलावा होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता खंडपाल से। बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें छात्रों को लैपटॉप, छात्राओं को स्कूटी, दलित और महादलित टोलों में टीवी, गरीब परिवारों के लिए हर साल धोती साड़ी देने जैसे कई वादे किए गए हैं। इस दृष्टि पत्र में गौ संवर्धन के लिए गौपालन निदेशालय की स्थापना और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की बात भी कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में अन्य केंद्रीय मंत्रियों और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अरुण जेटली ने दावा किया कि ये दृष्टिपत्र चार्टर ऑफ डेवलपमेंट है, ये बिहार को आर्थिक पिछड़ेपन से निकालने का संकल्प है। सीरिया में रूस के हवाई हमले जारी हैं। रूस का दावा है कि आज भी इदलिब और हामा शहर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रूस इस्लामिक स्टेट के अलावा अन्य हथियारबंद गुटों पर भी बमबारी कर रहा है, लेकिन रूस की संसद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कमेटी के उपाध्यक्ष लियोनिड कलश्निकोव ने इन खबरों से इनकार किया है। हम सीरिया की राष्ट्रीय सेना के साथ ही काम नहीं कर रहे, बल्कि यूरोपीय और अमेरिका के सेनाधिकारियों के साथ भी जानकारियां साझा कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ऑपरेशन में गलती नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि पहले ऑपरेशन में कोई गलती नहीं हुई थी। कल 30 उड़ानें भरी गई थी और मुझे यकीन है कि हमने सही जगहों पर निशाना लगाया था। हमने फुटेज और उन इलाकों को देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पश्चिमी देशों ने ये फैसला क्यों किया है कि हमने गलत जगहों पर हमले किए हैं। ये थे लियोनिड कलश्निकोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण में लगाए गए आरोपों का भारत ने जवाब दे दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथ को एक वैध हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। दुनिया भी इसे लेकर चिंतित है क्योंकि इसके परिणाम पाकिस्तान के नज़दीकी पड़ोसियों से आगे तक पहुँच रहे हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने चरमपंथ को पाला पोसा और अब वो ही उसके हाथ काट रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा की बहस के जवाब देने के बहस में जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने जवाब दाखिल किया। ईरान का मानना है कि सऊदी अरब में हज के दौरान हुई भगदड़ में ईरान के 460 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा पिछले अनुमान से दुगना बताया जा रहा है। ईरान के 200 से ज्यादा हज यात्री अभी लापता हैं। ईरान रेड क्रेसेंट का कहना है कि ये लोग सऊदी के अस्पतालों में भी नहीं मिल पा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं दिन भर, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी दृष्टि पत्र जारी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में कई केंद्रीय मंत्रियों और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये दृष्टि पत्र जारी किया।
आज बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र जारी किया गया है। ये बिहार में एक चार्टर ऑफ डेवलपमेंट है और आर्थिक दृष्टि से बिहार को पिछड़ेपन से निकालने का एक संकल्प है।
तो ये थे अरुण जेटली। विजन डॉक्यूमेंट में भाजपा नेताओं ने जो वो वादे भी किए हैं जो चुनाव जीतने के बाद वो बिहार की जनता को देना चाहते हैं। इसमें छात्रों को लैपटॉप और छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है। वहीं दलित और महादलित टोलों में टेलीविजन, गरीब परिवारों के लिए हर साल धोती साड़ी देने जैसे कई छोटे बड़े वादे किए गए हैं। कार्यक्रम में अरुण जेटली ने अपने दृष्टिपत्र को विकास का चार्टर बताया, विकास का घोषणा पत्र बताया, तो अपने विरोधी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों को बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
देश के विभिन्न राज्यों में जो विकास के मापदंड होते हैं, बिहार बहुत पीछे, और आज जो चरित्र है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। जंगल राज के जो निर्माता निर्देशक थे वही हैं, केवल अभिनेता बदलने से उसका, उस शासन का, उस गठबंधन का चरित्र बदलने वाला नहीं है। और इसलिए इस चुनाव में जो बहस होनी चाहिए वो किसी दूसरे विषय पे नहीं हो सकती। ये तीनों से ये पूछना कि पिछले 68 वर्षों में एक के बाद एक आपको अवसर मिला, इस पिछड़ेपन की आर्थिक स्थिति से बिहार को निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया।
इसके अलावा चुनावी बयार में बिहार में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। नया रंग दिखा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर प्रमुख जीतन राम मांझी के शपथ पत्रों में। मांझी दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही जगह दिए शपथ पत्र में उन्होंने अलग अलग जानकारी दी है। सुनिए पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो पर्चा भरा है उसमें दी जानकारी में अंतर है। बता दें, बीती 21 सितंबर को मखदूमपुर और 26 सितंबर को इमामगंज के लिए उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन सिर्फ 5 दिन के अंदर ही मांझी की अचल संपत्ति में 2.25 लाख रुपये कम हो गए तो नकदी भी 5 लाख रुपये घट गई। मखदूमपुर सीट के लिए भरे पर्चे में उनकी अचल संपत्ति 38,21,000 रुपये है तो इमामगंज सीट के लिए भरे पर्चे में 36,42,000। मांझी के भरे पर्चे में पत्नी की चल संपत्ति और उनकी देनदारी में भी अंतर है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि मखदूमपुर के हलफनामे में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन उसे अगले दिन ही सुधार लिया गया था।
एफिडेविट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिया था वो उस आधार पे वकील ने नहीं लिखा था। जिस दिन नॉमिनेशन किया था उसके दूसरे दिन ही संशोधन के लिए दे दिया गया था और उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया गया था।
हालांकि जानकारी में संशोधन के लिए आवेदन की प्रति हम प्रवक्ता दानिश रिजवान नहीं दिखा पाए। विपक्ष इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी को आड़े हाथों ले रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग से जीतन राम मांझी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है।
नहीं, गलती क्या होता है, बच्चा तो है नहीं मांझी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 80 से आप राजनीति कर रहे हैं, मिले रहे हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लगातार कई चुनाव आप लड़ते रहे, तो गलती से इंटेंशनली तथ्यों को छुपाया है मांझी जी ने, और तथ्यों को छुपाने के आरोप में इन पर मुकदमा भी होना चाहिए और उनको चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि इमामगंज सीट जेडीयू के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यहां से विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको मांझी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू मांझी पर कोई तीर चलाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के दौरान और उससे हटने के बाद भी मांझी व्यक्तिगत कारणों से हमेशा ही विवादित रहे।
तो जीतन राम मांझी के शपथ पत्रों में अलग अलग जानकारी दी है, उन्होंने खुद ही ये जानकारियां दी हैं। ये थी पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के बाद अब चलते हैं दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में, जहां बिसाहड़ा गांव में दूर दूर तक वीरानी छाई हुई है। यहां दुकानें बंद हैं और लोग सड़कों से नदारद हैं। सरकारी अधिकारियों, पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल सोमवार को गोमांस खाने की अफवाह के बाद हुई हिंसा में इस गाँव के अखलाक अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद से वहां पे पूरी तरह से वीरानी पसरी हुई है और लोग कर्फ्यू जैसा माहौल है। हमारे साथ ही सलमान रावी भी इस समय बिसाहड़ा गांव में हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। सलमान साहब, क्या स्थिति है, किस तरह का नजारा वहां पे दिख रहा है, जो अभी मैंने बयां किया कुछ वैसा ही या उससे कुछ अलग हटकर?
देखिए, दिन भर तो तांता लगा रहा अधिकारियों का, राजनेताओं का और मीडिया कर्मी, तो जिस दिन से घटना घटी है उसके बाद वाले दिन से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं एक तरीके से। लेकिन अब आप अगर मेरे पीछे आवाज सुन पा रहे होंगे, जनरेटर की यहाँ बिजली नहीं है और ऐसे में ये जो अंधेरा है ये माहौल को और ज्यादा दहशतनुमा बनाता है। यहाँ सिर्फ ये घटना ही नहीं, क्योंकि उस घटना के अगले ही दिन कुछ और भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे ही, और आज प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर प्रधानों को बुलाकर बैठक की ताकि जो है स्थिति सामान्य हो पाए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, खासतौर पर एनटीपीसी की जो कॉलोनी है, एनटीपीसी का विद्युत नगर का जो इलाका है, वहाँ का एक जो धार्मिक स्थल है वहाँ काफी डिप्लॉयमेंट हुआ है, चूंकि वहाँ भी हमला हुआ था। और लेकिन एक बात जो परिवार वालों में रोष है वो ये है कि जिनको नामजद किया गया उनमें से सिर्फ 6 लोगों को पकड़ा गया है, बाकी ये 4 लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और इसके अलावा और भी लोगों की जिनकी शिनाख्त करने का ये दावा कर रहे हैं कि पहचान लेंगे, तो अभी ये जो है थोड़ा पुलिस कटघरे में है, क्योंकि अभी तक इनके परिवार वालों का कहना है कि ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है पुलिस की तरफ से। सिर्फ इसके जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने आगे मुआवजे के ऐलान जो किया मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की आके बताया, इसके अलावा और इनका कहना है कि कुछ जमीन पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि अब प्रशासन थोड़ा सा उसने मुस्तैदी की है, और मैं जिन इलाकों में यहाँ दौरा कर रहा हूँ उससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, इससे पहले लगातार इस तरह की वारदातें इस पूरे दादरी के इलाके में कहीं कहीं पर होती रही हैं पिछले 2 महीने में, जिसमें 4 अगस्त को इसी तरह के एक वारदात में 3 लोगों की जो पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी वो भी एक मामला बहुत अहम है।
सलमान साहब, क्या अखलाक के परिवार वालों से या गांव के और लोगों से भी आपकी कुछ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है?
जी हाँ, मैं तो लगातार कल भी था, मैंने शाम में रिपोर्ट की थी वहां से, और सुबह के कार्यक्रम में भी आया था। उनके जो घर वाले हैं, खासतौर पर उनका ये आरोप था कि अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं कि वो केस वापस ले लें, हालांकि वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये धमकी देने वाले लोग हैं कौन, क्या ये शरारत कर रहा है कोई बाहर का या फिर वो गांव के ही लोग हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनको मोबाइल फोन पे धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस बीच में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने तो ये स्पष्ट किया है कि जो हमला करने वाले लोग थे उसमें बाहर से आए हुए लोग भी बहुत सारे थे, जिन्होंने उकसाया वहाँ के लोगों को, एक मॉब जो है क्रिएट किया, एक माहौल बनाया 6 बजे शाम से लेकर 10:30 पर जब ये हमला हुआ उस घर पर, तब तक वो माहौल बनाया। तो इसमें ज्यादातर जो है बाहर के लोगों का हाथ है, और खास तौर पर जो छुटपुट सेनाएं जो यहाँ पे बनी हुई हैं दादरी के इलाके में, जिनको बाहर और कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर उनका खासा प्रभाव है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान रावी। सलमान रावी उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके के बिसाहड़ा गांव में है, जहां पर इस समय तनाव बना हुआ है सोमवार को गोमांस खाने की अफवाह के बाद हुई हिंसा के चलते। दिनभर आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से। अब बात रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तरी शहर कुंदूज के प्रमुख इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। 2 दिन पहले ही अफगान सेना ने तालिबान के कब्जे से कुंदूज को वापस पाने का अभियान शुरू किया था। कुंदूज पर सोमवार को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अधिकारियों का कहना है कि रात भर चलाए गए अभियान में सेना ने कई अहम सरकारी इमारतों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया। इस संघर्ष में तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा अधिकारियों ने किया है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
ये आवाजें हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चल रहे विरोध प्रदर्शन की। अफगानी जनता चरमपंथी समूह तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तरी शहर कुंदूज के प्रमुख इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। 2 दिन पहले ही अफगान सेना ने तालिबान के कब्जे से कुंदूज को वापस पाने का अभियान शुरू किया था। कुंदूज पर सोमवार को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अधिकारियों के अनुसार रात को चलाए गए अभियान में सेना ने कई अहम सरकारी इमारतों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है। अधिकारियों ने इस संघर्ष में तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा भी किया है। प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने कहा,
मर्दम आजादी में खया, मर्दम बराबरी में खया, मर्दम अदालत में खया।
हम अफगानिस्तान के लोग आजादी, समानता और न्याय चाहते हैं। हम आजाद और लोकतांत्रिक देश चाहते हैं। हम तालिबान और उसके समर्थक पाकिस्तान के ISI का शासन नहीं चाहते। सरकार में कई तालिबानी समर्थक हैं जो यहां स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि उन सभी के लिए और चरमपंथियों के लिए हम शमशान बनाएंगे। काबुल में तालिबान विरोधी प्रदर्शन कर रही एक महिला ने कहा,
अपने खून की आखिरी बूंद तक
ہم چرمپنتھیوں کو روکیں گے اور طالبان کا اندھیر یگ افغانستان میں نہیں آنے دیں گے۔
حالانکہ طالبان نے اس پر پرتکریا دیتے ہوئے افغان سینا کی اس خبر کو ماتر دشمن دوارا کیا گیا دعویٰ بتایا۔ 2001 میں ستا سے باہر ہونے کے بعد طالبان نے پہلی بار کسی شہر پر نینترن حاصل کیا تھا۔ کندوز کے پولیس پرمکھ کے پروکتا سید سرور حسینی نے بی بی سی افغان سیوا کو بتایا کہ سینا نے پولیس پرمکھ کاریالے، گپتچر ایجنسی سمیت کئی سرکاری عمارتوں پر پھر سے نینترن حاصل کر لیا ہے اور کئی طالبان لڑاکوں کے شو وہاں پڑے ہوئے ہیں۔
عملیات تصویری مشترک نیروی امنیتی افغان
ناٹو سہت افغانی سینا چرم پنتھیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ رات 9 بجے سے شروعات کر کے صبح 4 بجے سینائیں کندوز میں گھس گئیں اور وہاں سے لڑاکوں کو نکال دیا گیا۔ طالبان کے کئی لڑاکے جو بھاگ نہیں پائے اب بھی وہاں عمارتوں میں چھپے ہیں۔ شہری وکاس منترالے کی عمارت میں چھپے چرم پنتھیوں کو مار دیا گیا ہے۔ پولیس پرمکھ کے پروکتا سید سرور حسینی کے شبد۔ افغانستان کے گرہ منترالے کے پروکتا صدیق صدیقی نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ اب افغان وشیش سرکشا بلوں نے اب کندوز پر نینترن کر لیا ہے۔ کندوز پر طالبان کے قبضے کو افغانستان میں چرم پنتھیوں کی سال 2001 سے اب تک کی سب سے بڑی جیت بتایا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی مانا کہ کندوز پر طالبان کا قبضہ ان کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھروسہ بھی جتایا کہ افغانی سرکشا بل طالبان کے قبضے سے کندوز کو چھڑا لیں گے۔ شہر میں سرکشا بلوں اور طالبان لڑاکوں کے بیچ پوری رات سنگھرش چلتا رہا۔
یہ تھے ویبھو شریواستو بتا رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان اور سرکاری سیناؤں کے بیچ سنگھرش جاری ہے۔ ادھر نیپال میں بھی کئی دنوں سے جاری تناؤ بنا ہوا ہے۔ نیپال کے دکشنی ترائی علاقے میں لمبے سمے سے چل رہے بند اور ہڑتال کے کارن چکتسا سیوا پربھاوت ہو رہی ہے۔ ایمرجنسی دواؤں اور آکسیجن کے ابھاؤ میں علاج میں دقتیں آ رہی ہیں۔ وہیں بند کے کارن مریضوں کو باہر لے جانے کے لیے ریفر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری اسپتال کی طرح ہی نجی اسپتال بھی پربھاوت ہیں۔ نیپال کے جنک پور سے برش کمار یادو کی رپورٹ۔
نیپال کے مدھیشیوں نے اپنے ادھیکار کی مانگ کرتے ہوئے 1.5 مہینے سے زیادہ سمے سے عام ہڑتال جاری رکھے ہیں۔ بند اور ہڑتال سے سواستھ سیوائیں بھی بری طرح پربھاوت ہیں۔ آکسیجن جیسی وستوؤں کی سپلائی رکنے سے اسپتال کی سیوائیں بند ہونے کے کگار پر پہنچ گئی ہے۔ جنک پور انچل اسپتال کے پرمکھ ڈاکٹر سنجے ٹھاکر کا کہنا ہے کہ آپورتی ویوستھا سہج نہیں ہوئی تو اسپتال بند کرنا پڑے گا۔
ماحول ایسا ہے کہ اب 15 دن کا اسٹاک کے بعد میں اسپتال بری طرح سے سفر کرنے والا ہے اسٹاپ ہونے کے کنڈیشن میں۔
وہیں ایندھن کی سمسیا سے ودیوت کی آپورتی بری طرح چرمرا گئی ہے، جس سے آپریشن ڈائلوسس پریوگ شالاؤں کا کام نیمت نہیں ہو پا رہا ہے۔ ڈاکٹر ٹھاکر بتاتے ہیں کہ ایندھن کے ابھاؤ میں پریاپت ایمبولینس بھی نہیں اپلبدھ ہو پا رہی ہے، جس سے روگی کو ریفر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔
1.5 مہینے سے یہاں پر ہڑتال ہے۔ یہاں پر سپلائی جتنا بھی ہے، ڈرگ کا سپلائی ہو، آکسیجن کا سپلائی ہو، اینٹی اسنیک وینم جو سب دنس کے بعد میں جو اپچار کیا جاتا ہے وہ ہٹوڑا سے لانا پڑتا ہے، اس کا سپلائی ہو، ایندھن کا سپلائی ہو، سب میں بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے۔
نجی اسپتالوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ سٹی اسپتال کے سنچالک پردیپ یادو کا کہنا ہے کہ سرکار نے جلد سمسیا کا سمادھان نہیں کیا تو سواستھ سیوا عام لوگوں کو اپلبدھ نہیں ہو سکتی ہے۔
دیرانی کے لیے آکسیجن نہیں ہے، ایمرجنسی اوستھی بھی نہیں ہے، سلائن پانی کا بھی ابھاؤ ہو چکا ہے، اور ڈیزل اپلبدھ نہیں ہونے سے، جنریٹر سویدھا نہیں دینے سے برامی کا سواستھ اپچار میں کٹھنائی ہو رہی ہے، اور آنے والا دن میں یہ صحیح رہا تو سواستھ اپچار دینے کا نوبت بھی نہیں رہے گا۔
ابھی بھی عام ہڑتال جاری ہے، ہر دن جلوس نکالا جا رہا ہے، ضرورت مندوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا آندولنکاری نشلک وترن کر رہے ہیں۔ برج کمار یادو، بی بی سی، جنک پور دھام۔
कार्यक्रम में आगे है अभी खेल की खबरें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों के जवाब, श्रोताओं की जिज्ञासाओं के जवाब, आपकी राय कार्यक्रम में।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी राय में। मैं हूं स्वाति बख्शी।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और राजेश जी, आपने पिछले कई हफ्तों में बहुत सारी तारीफ सुनी रिहान फजल ने जो श्रृंखला पेश की भारत पाक युद्ध 1965 का जो था उसकी वर्षगांठ पर, लेकिन उसकी बहुत आलोचना करती हुई एक चिट्ठी आज मेरे हाथ में है।
मैं जरूर सुनना चाहूंगा।
पोस्ट कार्ड आया है आशुतोष कुमार पांडे का, जिला बक्सर बिहार से लिखते हैं कि रिहान साहब रेडियो श्रोताओं खासकर ग्रामीण श्रोताओं की नब्ज को भली भांति पकड़ते हैं कि उन्हें क्या कब और कैसे सुनाकर अपना फैन बना लें। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने इतनी किताबें पढ़ी जिसका आपने सिर्फ जिक्र 22 कड़ियों में किया। पूर्व सैन्य अफसरों को आपने कमेंट लिया और उनके रिश्तेदारों का भी। थोड़ा आप अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर उस युद्ध की विभीषिका को झेलने वाले लोगों से राय लेते या आप उनसे पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता।
इन्होंने जो चिट्ठी के पहले हिस्से में सारी बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच है कि रेहान ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे अधिकारियों से बात की, और ये भी सच है कि जो लड़ाई के मोर्चे थे वो ढेर सारे थे, और लड़ाई के मोर्चे तो भारत से बाहर पाकिस्तान में भी थे और पूरब में भी थे, पश्चिम में भी थे, कई जगहों पर लड़ाई चल रही थी। तो ये ज़रूर है कि 50 साल गुजर जाने के बाद दोबारा उस लड़ाई के मैदान पर जाने पर क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, इसकी कोई बहुत हमें उम्मीद नहीं थी। और ये वजह थी कि हमने तय किया कि उसके बारे में उन लोगों से बात की जाए, और उसको अभी क्या हालत है इसका जायज़ा लेने का मकसद नहीं था कार्यक्रम का, बल्कि ये मकसद था उन लोगों को बताने का जिनकी तादाद करोड़ों करोड़ में होगी, ऐसे लोगों की जो 65 की लड़ाई के बाद पैदा हुए हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, जिनको उसकी याद नहीं है उस लड़ाई की, उनको ये बताना कि उस दौर में क्या। लेकिन जो आपकी राय है उसकी भी हम कदर करते हैं, उसका सम्मान।
लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कार्यक्रम तो जरूर ध्यान लगाकर सुना है,
उन्होंने सुना जरूर है।
और ये दूसरी चिट्ठी जो आई है वो जंग बहादुर सिंह की गोल पहाड़ी से आई है, और ये तारीफ कर रहे हैं निखिल रंजन की, जिन्होंने 30 सितंबर 2015 को कार्यक्रम पेश किया दुनिया जहां, जिसमें राष्ट्रसंघ की 70वीं वर्षगांठ और सुरक्षा परिषद के सुधार विस्तार को विषय बनाया गया था। कहते हैं कि प्रस्तुति ज्ञानवर्धक थी। और तारीफ का एक पत्र आर आर गंगवार का पीलीभीत से, वही श्रृंखला रेहान फजल की जिसकी बहुत चर्चा है, इन्होंने इसकी तारीफ की है प्रस्तुतिकरण के लिए। एक पत्र जो आया है वो विनीत कुमार का है, रिहारिया मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है, और कहते हैं दुनिया जहान की तारीफ इन्होंने एक बार फिर से की है, निखिल रंजन को धन्यवाद दिया है, लेकिन कहते हैं कि आपका कार्यक्रम हमसे पूछिए मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना, अगर इसे दोबारा करेंगे तो अच्छा लगेगा, और पहले की तरह किसी आर्थिक शब्द की परिभाषा और उसके विषय में भी बताया जाए, खेल समाचार की तरह विज्ञान, तकनीक और आर्थिक समाचार भी सुनाएं।
बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए, और ये सुझाव हमें पहले भी कई बार मिला है, और ये कार्यक्रम जो है हमसे पूछिए ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है एक ज़माने में, और बहुत लंबे समय तक चला, और उसके बाद हमें लगा कि अब कुछ नया करने की ज़रूरत है और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है, तो फिर हमने उसकी जगह दूसरे कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब हम अलग अलग ढंग से अलग अलग कार्यक्रमों में आपकी दिलचस्पी के मुताबिक, आपके अनुरोध के मुताबिक करते रहते हैं, और आपके सुझाव के लिए शुक्रिया।
शिकायत भरी एक और चिट्ठी एहसान असगर की है, मेल है, लिखते हैं कि क्या बीबीसी के पास समाचारों का अकाल है, रांची से रवि प्रसाद की रिपोर्ट पसंद नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट में कुछ विशेष बात थी जो इसे प्रसारण योग्य बना सके, रिपोर्ट प्रसारित कर भी दी गई तो फ्रांस की मैडम ने जो इंग्लिश में बच्चों की तारीफ की उसका हिंदी अनुवाद नहीं किया गया था, और रिपोर्ट के आखिर में रवि जी हुदूप के बच्चों के इस प्रयास की तुलना फिल्म लगान के गाँव वालों के उस जज्बे से कर रहे थे जबकि दोनों में कोई समानता नहीं है।
आपका आपकी जो ये टिप्पणी है हम उन तक पहुंचा देंगे जो जिनकी ये रिपोर्ट थी, और अच्छा है कि आपने बहुत खुल के और बहुत अच्छी तरह बताया कि आपको क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, और इस तरह की जो राय है इससे हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने में ही मदद मिलती है, तो आपका बहुत शुक्रिया। और अब मेरे ख्याल से घड़ी इशारा कर रही है, वक्त हो चुका है
जी हाँ।
आपकी राय को समेटने का, चलते चलते आपको जल्दी से पता बता दें, अगर आप डाक से चिट्ठी लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आप अपने पत्रों को लिखना जारी रखिए, आप अपनी प्रतिक्रियाओं को देना जारी रखिए, और आपकी शिकायतें अगर हैं तो उन्हें भी बताना जारी रखिए। और अब एक खबर बीबीसी हिंदी.com की, राजस्थान में स्कूली छात्राओं पर FIR। राजस्थान के टोंक जिले का है ये मामला, जहां शिक्षकों की कमी का विरोध कर रही छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 150 छात्राओं समेत 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला टोंक जिले के चोरू गांव का है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। सामाजिक संगठन छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उधर प्रदर्शन कर रही छात्राओं को बातचीत का मौका दिए बिना लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए पहली नज़र में जिम्मेदार मानते हुए अलीगढ़ के थानाधिकारी अमर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुरा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने चोरू गांव से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 116 पर मंगलवार को जाम लगा दिया था। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर अलीगढ़ थानाधिकारी ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर के पुलिस पर पथराव भी किया। इस खबर को आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो आइए bbchindi.com पर। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला सीरीज का आगाज कल हो रहा है। दोनों टीमें 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने धर्मशाला में उतरेंगी। T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड और घरेलू मैदान को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है। इसके बावजूद मेहमान टीम के हौसले बुलंद हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम मैच से पहले कई बारीकियों पर ध्यान दे रही है। प्रोटीज T20 टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने मैच से पहले पिच का मुआयना किया।
विकेट में नमी दिख रही है, कल तक विकेट तैयार हो जाएगी। हम अच्छे मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए पिच काफी अच्छी है, इस पर खूब रन बनेंगे। दिल्ली में मिले अभ्यास मैच की विकेट से ये काफी अलग है। मुझे उम्मीद है हम यहाँ से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत करेंगे।
और अब बात महिला क्रिकेट की। ICC की नई मल्टी फॉर्मेट सिस्टम के अंतर्गत महिलाओं की ताजा टीम रैंकिंग जारी हुई है। भारतीय टीम को इस रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। नई रैंकिंग सिस्टम के अनुसार T20, वनडे और टेस्ट मैचेस के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर एक टीम रैंक दी जाएगी। 2013 ICC महिला विश्व कप और 2014 वर्ल्ड T20 की विजेता ऑस्ट्रेलिया ने पहले पायदान पर कब्जा जमाया है। उसके खाते में 134 अंक हैं। 10 टीमों की टेबल में इंग्लैंड दूसरे जबकि न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। टीम रैंकिंग हर सीरीज के खत्म होने पर अपडेट की जाएगी। और अब बात टेनिस की। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी स्विस पार्टनर मार्टिना हिंगिस का विजयी अभियान जारी है। पिछले हफ्ते ग्वांगझू ओपन पर कब्जा करने वाली सानिया और मार्टिना की जोड़ी वुहान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय स्विस टॉप सीड जोड़ी ने अमेरिकी जोड़ी रकेल जोन्स और एबिगेल स्पियर्स को 6-2, 6-2 से पराजित किया। इस साल ये जोड़ी विंबलडन और US ओपन समेत 6 खिताब जीत चुकी है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा। और आपको याद दिला दें कि अगर आप ताज़ा तरीन खबरें और तमाम तरह की तस्वीरें देखना चाहें और खबरें पढ़ना चाहें, विश्लेषण पढ़ना चाहें, तो आइए bbchindi.com पर। आपको ताज़ा तरीन खबरों के अलावा कई मुद्दों पर विश्लेषण मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि नेपाल का मामला इस समय काफ़ी गर्म चल रहा है। भारत की 8 बातें जो नेपालियों को पसंद नहीं हैं, ये महेश आचार्य जो काठमांडू में BBC संवाददाता हैं, उनका ये लेख है, विश्लेषण है। अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहें तो आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब चलते चलते एक नज़र प्रमुख समाचारों पर।
BBC समाचार। बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें लैपटॉप, स्कूटी, TV और साड़ी देने जैसे कई वादे किए गए हैं। अमेरिका के वरिष्ठ सेनेटर जॉन मैकन ने कहा है कि सीरिया में रूस के शुरुआती हमलों में फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका फ्री सीरियन आर्मी गुट का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण में लगाए गए आरोपों का भारत ने जवाब दे दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथ को एक वैध हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ईरान का मानना है कि सऊदी अरब में हज के दौरान हुई भगदड़ में ईरान के 460 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। ईरान के 200 से ज्यादा हज यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच कुंदूज में अभी लड़ाई जारी है। BBC समाचार।
तो दिन भर की इस अंक में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरूठिया। 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी घटना चक्र में। समीर आत्मज मिश्र को फिलहाल दें अनुमति। नमस्कार।